السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. रमज़ान अल मुबारक का ये महीना गुनाहों की बख्शिश का महीना है। वो गुनाह जिनको हम अक्सर बहुत हल्का समझते हैं, और हम सब एक तरह से मुतमईन रहते हैं कि दिल में हमारे ये बात होती है कि हम इतने भी गुनाहगार नहीं हैं। कुछ ज़्यादा तो हमने बुरा नहीं किया, शैतान हमें दिखाता रहता है टाइम टू टाइम कि हमने कितने अच्छे अच्छे भी तो काम किए हैं। तो क्या फ़र्क पड़ गया अगर थोड़े से गुनाह भी कर दिए तो, और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। जबकि आप देखें, आदम अलैहिस्सलाम को जो जहन्नम जन्नत से निकाला गया, तो उसका सबब क्या था? क्या उन्होंने बहुत सारे गुनाह किए थे, या सिर्फ एक गुनाह किया था? सिर्फ एक किया था। इसके बावजूद उस एक गुनाह पर अल्लाह ताला की इतनी नाराज़गी हुई कि उनको जन्नत से निकालने का जरिया वो एक गुनाह बन गया। इसके बाद हम सोचें कि क्या हम कह सकते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर गुनाह हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, और गुनाह तो सबसे हो ही जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतने हमसे भी ज़्यादा गुनाह किए हैं, और हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। ये कह कह के हम अपने आप को तसल्लियां भी देते रहते हैं और धमकियां भी देते रहते हैं कि सोए रहो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होगा। हालांकि हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो वो एक गुनाह पे भी पकड़ ले, और चाहे तो किसी के बहुत सारे गुनाहों पे भी उसको छोड़ दे। अल्लाह ताला चाहे तो एक गुनाह की भी सजा ये दे के जहन्नुम में चला जाए इंसान। शैतान ने एक ही गुनाह किया था ना, बहुत सारे तो नहीं किए थे, लेकिन उस एक गुनाह ने उसको क्या करवा दिया, कहाँ तक पहुंचा दिया, कितना जलील करा दिया, और कितना उस मकाम से गिरा दिया जिस पे वो अल्लाह ताला के हाँ था। और हदीस भी हमें ये बताती है कि इंसान अपनी जुबान से बाज दफा कोई ऐसा कलमा निकालता है जो अल्लाह ताला को इतना नापसंद होता है कि वो अपनी जगह जहन्नुम में बना लेता है, इतनी नीचे जितने जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। तो हमें पता नहीं है कि इस वक्त हमारा स्टेटस क्या है, क्या हमारे इस वक्त गुनाह से आता है या नेकियां से आता है, क्या अल्लाह ताला हमसे राजी है या नहीं राजी है। कहीं ये तो नहीं कि हमने अपने लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है अपने गुनाहों की वजह से। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारा गुनाह अल्लाह ताला को ऐसा लगा है कि उसकी वजह से वो हमें हमारे लिए जहन्नुम लिख चुका है, हम नहीं जानते। फिर हम कैसे मुतमईन हो सकते हैं, फिर कैसे हम बेफिक्र हो सकते हैं, फिर कैसे हम गुनाहों पर ना रोएं, और कैसे हम माफियां ना मांगें, और कैसे हम सजदों में गिर गिर के आंसू ना बहाएं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब बेफिक्री है, बेतवज्जो ही है, गफलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात हमें बताई थी निजात हासिल करने के लिए। कैसे इंसान निजात हासिल कर सकता है? एक सहाबी फरमाते हैं, उकबा बिन आमिर, कि एक दफ़ा मेरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, तो मैंने जल्दी से आपका हाथ थाम लिया और कहा, या रसूलल्लाह, मोमिन की निजात किस अमल पे है? ने उनको कितनी फिक्र होती थी, वो सहाबी रसूल है, निजात कैसे होगी? उनको तो खुश रहना चाहिए था कि हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, हमारी नहीं निजात होनी तो और किसकी? निजात समझते हैं ना, यानी बचत किस तरह से हो सकती है हमारी, हमारा किस तरह से छुटकारा हो सकता है आग से, जहन्नुम से। अल्लाह ताला की नाराजगी से किस तरह से हम बच सकते हैं, क्या करें ऐसा? तो वो क्यों इतनी फिक्र करते थे? वो जानते थे कि अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब किताब बहुत मुश्किल है, उसके यहाँ खड़े होना बहुत ही ऐसा काम है कि जो इंसान ने कभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। वो दिन होगा जो बहुत मुश्किल दिन है, तो वो इतना डरते थे कि पता नहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ऐसी हो गई हो जिसकी वजह से उस दिन हमारी निजात ना हो सके, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा गुनाह हो गया हो जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गया हो। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद थे, फिर भी उनको अपनी निजात की कितनी फिक्र थी। कभी हम सोचते हैं कि किस तरह क्या करूं कि मेरी निजात हो जाए, हमें ये ख्याल आता है कभी क्या कर लूं ऐसा बचत हो जाए मेरी, बच जाऊं वहां पे। जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या जवाब दिया? तीन बातों का बताया था। एक बात फरमाया, ए उकबा, जुबान थामे रख, जुबान को यानी कंट्रोल में रख, अपने घर में बैठा रह। यानी अपने घर में बैठा रहे का मतलब क्या? यानी जब बहुत ज्यादा इंसान घर से बाहर होता है, खासतौर पे औरतें घर से बाहर हैं, बनाव सिंगार करके नुमाइश करती फिरती हैं, मर्दों की नजरों को भटकने का सबब बनती हैं, कहीं फितनों में इंसान खुद पड़ जाता है, वक्त का ज़िया होता है, कहीं इधर उधर बैठ के कई गुनाह समेट लेते हैं, किसी पे नजर उठ जाती है, किसी के साथ कोई ऐसी बात हो जाती है, तो घर में बैठे रहो, खामखा से ऐसे ही बाहर सड़कों पे घूमते फिरते रहना बिला वजह, कुछ इसका हासिल नहीं। और आजकल तो खैर फिजिकली बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, वर्चुअली इंसान बाहर घूमता फिरता है, तो वर्चुअली घूमने से परहेज भी करें, घर में बैठा रहे, अपने आप को यानी इंसान बचा सकता है अगर वो थोड़ा अपने आप को यानी उसमें रखे, कंट्रोल में रखे। दूसरा, तीसरी बात, अपनी खताओं पे रोता रहे, जो गुनाह हो गए हैं ना उस पे रोता रहे। अल्लाह अकबर, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको बता रहे हैं? अपने सहाबी को, कि अपने गुनाहों पे रोना ये भी निजात का सबब बन जाता है। तो पहले तो जुबान को काबू में रखना था, और जुबान को काबू में रखने के बारे में एक बात समझ लें कि जुबान जब वो बोलती है जो उसको नहीं बोलना चाहिए, तो जानते हैं इसे क्या होता है? मालिक बिन दीनार ने तीन चीजें बताई हैं कि तीन बातें हो जाती हैं जब इंसान की जुबान कंट्रोल में नहीं होती, यानी इसको ताना दे दिया, उसको कुछ कह दिया, उसको जिधर मर्जी जुबान चलती जा रही है, उसको बेलगाम घोड़े की तरह बस छोड़ा हुआ है, जो मर्जी किसी को बोलती रहे, जो मर्जी कहती रहे, कोई पता ही नहीं है क्या क्या बोल गई आज के दिन, कोई पता ही नहीं है कि किसके ऊपर गीबत कर दी, किसको गाली दे दी, किसको तकलीफ पहुंचा दी, किसको ताने दे दिए, किस पे इल्जाम लगा दिया, कहीं तकबर के जुमले बोल दिए, कहीं कोई नाइंसाफी की बात कर दी, क्या क्या बोलते गए बेकार। तो जब जुबान से वो बातें निकलना शुरू हो जाती है ना कि जो इससे नहीं निकलनी चाहिए, इनमें सारी गुनाह की बातें आ गई, तो मालिक बिन दीनार कहते हैं कि फिर इंसान का ना दिल नमाज में नहीं लगता, बेजारी होने लगती है, जिक्र अजकार में भी नहीं लगता। अल्लाह अकबर, अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब जरूर हमने अपनी जुबान से कोई ऐसी बातें हम करते रहते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर नमाज में हमारा दिल अभी तक नहीं लग रहा, हम इतनी नमाज के बारे में सुन रहे हैं सब है, फिर भी नहीं हमारी नमाज सही हो रही, और दिल ही नहीं लगता ना, जिक्र अजकार भी करने का दिल नहीं करता, वो भी बोरियत लगती है, सिख दिल भी सख्त हो गया हुआ, अगर ना आंख में आंसू आते हैं, दिल भी सख्त है, रहम के जज्बात भी नहीं आ रहे, और इसकी कमी भी हो रही है, तो जिंदगी में जरूर देखें कि कहाँ पर मेरी जुबान फिसलती है, कहाँ मेरी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। तो अगर हम भी निजात चाहते हैं तो फिर हमें ये काम करने होंगे। हमें अपने गुनाहों को भी बड़ा समझना होगा, उनको याद रखना होगा कि मुझसे गुनाह हुए हैं, बुराइयां हुई हैं, और इसको हल्का ना जाने, कभी भी उसकी जस्टिफिकेशन ना दें, कभी भी उस पर इसरार ना करें। तो क्या हो गया, फिर क्या हुआ, फलां भी तो ऐसे करता है। इसकी ये नहीं कि आखरत में इसकी कोई सजाएं मिलेंगी, सिर्फ दुनिया में भी मिलना शुरू हो जाती है। आखरत में तो है ही है, इंसान अल्लाह ताला की नजरों से भी गिर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत माफ कर दी जाएगी सिवाय गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करने वाले। अब तो शर्म भी खत्म हो गई है, खुल्लम खुल्ला करते हैं उसको गुनाह भी नहीं समझते। तो क्या हो गया, सभी करते हैं, वो गुनाह गुनाह ही नहीं समझे जाते सोसाइटी में। मिसाल के तौर पे औरतों का बेहिजाब घूमना, लोगों का म्यूजिक सुनना, हराम खाना, मिक्स गैदरिंग मर्दों औरतों की, झूठ, बेईमानी, करप्शन, सूद, धोखा, इसको कोई बुराई नहीं समझता। फोहो सीन्स देखना, इसको कोई बुराई नहीं समझता। और इनसे नफरत भी नहीं है किसी को, धड़ल्ले से हम किए जाते हैं और हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मोमिन अपने गुनाहों के बारे में बहुत परेशान रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को तो अपने गुनाह ऐसे लगते हैं जैसे पहाड़ के नीचे बैठा और अपने ऊपर पहाड़ गिरने का उसको खौफ हो, और जो मुनाफिक है उसको अपने गुनाह ऐसे लगते हैं जैसे एक मक्खी नाक पे बैठी हुई है, ऐसे बस आराम से उड़ा देगा। मक्खी ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो सोच ले, मुझे मेरे गुनाह कैसे लगते हैं, मक्खी की तरह के बस ऐसे उड़ जाएंगे, तो क्या हो गया। या फिर मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहाड़ के नीचे बैठे, पहाड़ मेरे ऊपर गिरने लगा। अल्लाह अकबर, अगर ये गुनाहों का बोझ लेकर हम कब्र में चले गए, यहां पर इससे इनको साफ नहीं हमने करा और हम परवाह भी नहीं करते, अच्छा इस जिक्र से गुनाह मिट जाते हैं, इस जिक्र से गुनाह मिट जाते हैं, या इस बात को कहने से हो सकता है कि गुनाह चढ़ जाएं, हम उसकी फिक्र नहीं करते और ना ही हम कोशिश करते हैं उन नेकियों की जिनसे गुनाह मिटने हैं, तो फिर हम इसका मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते गुनाहों का। भाई ठीक है, होते हैं तो होते रहे, मुझे तो लगता है सारे मिटी गए होंगे अब तक। इसका मतलब ज्यादा हमारा स्ट्रेस क्या होता है, मेरी जॉब स्ट्रेस है, बच्चे स्ट्रेस हैं, घर के और काम स्ट्रेस हैं, इतने स्ट्रेसेस हैं, अब मैं गुनाहों के स्ट्रेस लूं। हालांकि ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी इंसान को फिक्र करनी चाहिए। अगर हमें पूरा साल भी नहीं फिक्र होती तो कम से कम रमजान में तो हम अपने गुनाहों की तरफ देखें, हम देखें हम क्या क्या कर चुके हैं, पूरे 11 महीने हमने क्या किया, कोई कमाई की है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे जा रही है, हमारे पास ज्यादा होना चाहिए नेकी का सामान और गुनाहों का बोझ उतरना चाहिए। डोंट एवर डेयर कि हम इन गुनाहों को लेके कब्र में चले जाएं, वरना वहां पे तो धुलाई नहीं हो सकती, वहां पे तो फिर सजा ही मिलती है। ये यहां पे है कि आराम से धुल सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मैं अमल सू हो यजलिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह यजिदुल्लाह गफूर रहीम, जिससे कोई बुराई हो जाए, अपने आप पे जुल्म हो जाए ना, फिर वो अल्लाह ताला से इस्तगफार कर ले तो अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ये इतनी आसानियां यहाँ के लिए हैं सिर्फ, कि आपने तरावी पढ़ ली आपके गुनाह बख्शे जाएंगे, आपने यानी क़याम किया रमज़ान में आपके गुनाह बख्शे जाएंगे, आपने रोज़ा रखा उससे आपके गुनाह बख्शे जाते हैं, आप और नेकियां करते हैं कितनी सारी नेकियां, उससे गुनाहों की बख्शिश के वादे आपको मिल रहे हैं। अब आप इतने सारे वादों के ऊपर भी इस चीज़ के वो इतनी खातिर में ना लाएं और बस समझें कि ठीक है भाई, मतलब इतनी फिक्र ही नहीं है, तो सोचें कि फिर ये गुनाह अगर लेके कब्र में चले गए तो क्या होगा। फिर ये जिंदगी में तो मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, हमारे गुनाहों की वजह से ही आती हैं, लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत है कब्र की मुसीबत, मौत के वक्त की मुसीबत, और उससे भी बड़ी आखरत की मुसीबत है, कयामत के दिन की हौलनाकी बहुत बड़ी है, जो दिन बच्चे को बूढ़ा कर दे, जिस दिन हमल वालियों के हमल गिर जाए उसकी सख्ती देख के, दूध पीते बच्चे को मां छोड़ दे, उसको बच्चे की परवाह ना रहे, रिश्ते कट जाएं, मोहब्बतें खत्म हो जाएं, लोग एक दूसरे को आग में डालने को तैयार हो जाएं कि इसको डाल दो, इसको डाल दो, मुझे बचा लो। सोच लें वो दिन कितना मुश्किल है। उस दिन एक इंसान गुनाहों का बोझ लेके अल्लाह ताला के आगे खड़ा हो जाए तो हम सोच ही नहीं सकते, ये कितनी परेशानी की बात है। लेकिन इस परेशानी को कोई परेशानी बनाता ही नहीं, इस परेशानी के ऊपर कोई फिक्रमंद नहीं होता। ये परेशानी हमें रात को भी नहीं उठाती कि हम रात को उठें तो हम कहें अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे क्योंकि मैंने बहुत गुनाह कर लिए। ए अल्लाह मेरे गुनाह, मेरी कमियां, मेरी कोताहियां, मेरी खताएं इतनी ज्यादा हैं और अब तू सिर्फ बख्शने वाला है, अगर तू मुझसे ना बख्शेगा तो मैं तो तबाह हो जाऊंगी। इस पे आंसू क्यों नहीं निकलते, इस पे निदामत क्यों नहीं होती, इस पे किसी की जरूरत क्यों है कि कोई हमें आए और कोई हमें रुलाए और कोई हमें कोई दुआ करा दे तो फिर हम दो आंसू निकाल लेंगे उसको रोते देख के। उस दिन तो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सकेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं बचा सकेंगे, लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को नहीं बचा सकेंगे, तो हम किस धोखे में बैठे हैं? नहीं जी हम तो फलां के साथ चले जाएंगे, नहीं जी फलां हमें बचा ही लेगा। तो कोई नहीं बचा सकेगा उस दिन, कोई जगह नहीं होगी जहां पनाह ले सके, कोई ऐसी जमीन नहीं होगी जहां पे जाके भाग के छुप सके, कोई आसमान नहीं होगा जो साइबान बन जाए। लिहाजा आज फिक्र करनी है, आज फिक्र करनी है, आज का दिन हमारे पास है, आज सोचना है अपने गुनाहों को, आज अपनी कमियों को सोचना है और ये देखना है कि मैं तेजी से हर दिन के गुजरने के साथ मैं तेजी से अल्लाह ताला की तरफ बढ़ रही हूं, उससे मुलाकात की तरफ। इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। इंसान कशा कशा अपने रब की तरफ बढ़ रहा है और उससे मुलाकात करने वाला है, इस मुलाकात की हमें कब फिक्र होगी? कौन से वो दिन आएंगे जब हमारी नमाजें अच्छी होंगी? कब वो दिन आएंगे हमारे रोजे अच्छे होंगे? कब वो दिन आएगा हमारी जुबान कुछ इंप्रूवमेंट तो होगी? कौन सा वो वक्त आएगा हमारे अखलाक बेहतर होंगे? कौन सा वो वक्त आएगा कि हम हकूक देने वाले होंगे? हकूक लेने से ज्यादा हमें देने की फिक्र हो जाएगी कि मुझे इसका सवाल मुझसे किया जाएगा? कौन सा वो दिन आएगा कि हम नेकियों में भागने वाले बनेंगे? कौन सा वो दिन आएगा कि हम गुनाहों से ऐसे बचेंगे जैसे हम कोविड से बचते हैं, कैंसर से बचते हैं, चोर डाकुओं से बचते हैं? कौन सा वो दिन आएगा? हमें डर लगता है कोई बीमारी हमें ना छू जाए, लेकिन हमें गुनाहों से डर नहीं लगता कि गुनाह हमें बर्बाद कर देंगे। तो हम अपने आप को देखें, अपनी कोताहियों पर नजर करें, अपने गुनाहों को सोचें और फिर उनके ऊपर अल्लाह ताला से माफी मांगें और ये सोच लें कि ये गुनाह मैंने लेके नहीं जाने और मैं चाहती हूं कि अल्लाह ताला मुझे यहीं पे अपनी रहमत से पाक साफ करते, सजा दे के नहीं। पाक साफ उस तरह से भी इंसान होता है कि जब उसको सजा मिलेगी तब पाक होगा, तब जन्नत में जा सकेगा। जन्नत में कोई गुनाहों को लेकर नहीं जा सकता कि उसके ऊपर गुनाहों गुनाह एक गंदगी है ना, गंदगी जैसे निजासत होती है, गंदगी लगी हो तो वो पाक जमीन है, उसके ऊपर कोई एंटर नहीं हो सकेगा इनके साथ। तो जाहिर है जो मर गया अब वो अब माफी नहीं है इस तरह, अब क्या अब उसको सजा मिलेगी? जन्नत में जाने से पहले उसने पाक साफ होना है तो कैसे होगा? कुछ तो कब्र में अजाब के जरिए, कुछ हशर के दिन अभी भी नहीं गुनाह उतरे तो अब जहन्नुम में गिरा के उसको साफ किया जाएगा, जब साफ होगा तभी आगे जा सकता है। सफाई जब तक नहीं होती वहीं पड़ा रहे। तो वी हैव टू चूज, हमने कहाँ सफाई करानी है, हमने अपने आप को गुनाहों से यहां पाक साफ करना है, या कब्र में, या जहन्नुम में, या हशर के दिन, किधर करना है? तो हम इस चीज के ऊपर जरूर गौर और फिक्र करें। आते हैं अपनी नमाज की तरफ। हम तशहुद में अशहद ला इलाहा इल्लल्लाह अशहद अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये हमने लास्ट टाइम किया था, और यही कलिमात इंसान वुजू से जब फारिग होता है ना, तो उसके बाद जो दुआएं पढ़ता है उसमें यही है, अशहद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, उसमें ला शरीक लहू भी है, वहदहु ला शरीक लहू भी है, व अशहद अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इससे मिलती जुलती ये दुआ है जो आप वुजू के बाद अगर कर लेते हैं तो आपको आठों दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाएंगे, जिससे मर्जी दाखिल। और यही मिलते जुलते अल्फाज जब अजान हो जाती है तो उसके बाद भी इंसान ये कहता है, वा अना अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, और उसके बाद ये भी कहना होता है, रदीतु बिल्लाहि रब्बं व बि मुहम्मदिन रसूलं व बिल इस्लामी दीना। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सुबह के वक्त भी आप कहेंगे तो 3 दफ़ा, आगे पीछे ये थोड़े से ये हैं, आप तो आपको अल्लाह ताला उस दिन राज़ी कर देगा, और अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी हो जाएगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल कराएं। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ती हैं, अजान के बाद पहले ये कलिमात, फिर दुरूद शरीफ, फिर अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़ी दावत तामा वाली दुआ। तो आज हम देखते हैं फिर दुरूद शरीफ को, कि दुरूद शरीफ पढ़ना, दुरूद शरीफ का माना क्या है? जब आप दरूद भेजते हैं, एक तो सबसे पहली बात ये कि दरूद क्यों भेजा जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे पर इस कदर एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं, आप हमारे मोहसिन हैं। तो जैसे इमाम इब्न कय्यम अल-जौज़ी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी सांसों की तादाद के बराबर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजे ना, तो वो भी आपका हक अदा नहीं कर सकता, तब भी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए मोहसिन बना के भेजे गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम में कि ये मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि मैंने तुम्ही में एक रसूल बना के भेजा। सुभान अल्लाह। तो दरूद शरीफ क्या है? पहले तो आपको ये बता दूं कि जब एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूल अल्लाह, हमें ये तो पता है, आपने जब फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तो हमें ये तो पता है कि आपको सलाम कैसे करना है, क्योंकि वो सलाम करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आपके ऊपर सलात कैसे भेजनी है, दरूद कैसे पढ़ना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दरूद इब्राहिमी सिखाया था। तो सलाम करना तो उन्होंने फरमाया कि हमें पता है, अब वो तो वैसे सलाम करते थे, हम कैसे करते हैं? जब हमने अत्तहियात के अंदर सलाम किया था ना, सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात, और उसके बाद ही हम दुरूद भी भेज देंगे ताकि ये आयत का जो हुक्म है वो पूरा हो जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि सलात भी भेजो और सलाम भी भेजो। तो अब हम सलात कैसे भेजेंगे? हम कहते हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये अल्फाज सिखाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ये कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर व आला आली मोहम्मद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। मैंने आपको बताया था आल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार भी, आपके फॉलोअर भी, और आपकी फैमिली भी शामिल है, कमा सल्लैत अला इब्राहिम व आला आली इब्राहिम इन्नक हमीद मजीद, जैसे कि तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहिम अलैहि सलाम पर और उनकी आल पर, बेशक तू हमीद है, तारीफ का मुस्तहिक है, इस काबिल है कि तेरी तारीफ की जाए, तेरे अंदर ऐसी सिफात है और तू मजीद है, बुजुर्गी वाला है, अल्लाह सारी बुजुर्गी वाली सिफात तेरे पास है, और अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, है अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी आल पर, कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद, जैसे तूने बरकत अता फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उनकी आल को। तो यानी हम ये दरूद पढ़ के हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी दुआओं की ज़रूरत है? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसलिए कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लीना अला नबी, अल्लाह ताला और खुद मलाइका भी, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता है अपने नबी पर और उसके मलाइका भी उन पर दरूद पढ़ती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर तुम ना भी पढ़ो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारा पढ़ना तुम्हें फ़ायदा देगा। इसलिए कि अल्लाह ताला को ये इतना पसंद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम दरूद पढ़ें कि अल्लाह ताला ने इसका हुक्म भी हमें दिया है और इसके ऊपर 10 रहमतें हमारे ऊपर नाजिल करता है अल्लाह ताला, 10 गुनाहों को बख्श देता है अल्लाह ताला, 10 दर्जात को बुलंद करता है अल्लाह ताला हमारे लिए। और फिर चाहे आप नमाज में पढ़ रहे हैं, चाहे आप नमाज के सिवा पढ़ रहे हैं, जो जिस वक्त भी आप पढ़ेंगे वो आपके लिए गुनाहों को माफ करने का जरिया बन जाएगा, रहमतें पाने का जरिया। अल्लाह ताला रहमत आपके ऊपर, कौन नहीं चाहता हम हमें रहमत मिले? अल्लाह तेरी, अल्लाह हमें तेरी रहमत मिले। सिर्फ एक दफा दुरूद पढ़ने से ऐसा हो जाता है। और फिर आपने जब कहा कि ए अल्लाह उनकी आल पर भी रहमत अता फरमा, जिसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया उनके ऊपर भी अल्लाह रहमत नाजिल फरमा। तो अगर हम भी फॉलोअर बन जाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से होंगे, तो हमारे ऊपर भी रहमत होगी जब भी कोई जब दरूद पड़ेगा, क्योंकि हम भी उनके फॉलोअर होंगे। और फिर ये भी देखें कि जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खसूसी तौर पे जिक्र क्यों किया गया? इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबूल अंबिया हैं, सारे पैगंबर जो उनके बाद आए वो सब उनकी औलाद में से थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी औलाद से थे, और उनके साथ इस उम्मत मुस्लिमा का खसूसी ताल्लुक है। इसलिए कि बैतुल्ला की ताबीर भी उन्होंने की, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी उन्होंने मांगी थी जो सूरह बकरा में मौजूद है। और उनकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि उनकी ज़िंदगी उसवाए हसना है मुसलमानों तुम्हारे लिए। और फिर उन्होंने अल्लाह ताला के हर हुक्म पे अमल किया बगैर किसी चू चराम के। इस काला लहू रब्बू अस्लिम काला अस्लम तुली रब्बिल आलमीन, जब उसके रब ने उसको फरमाया इस्लाम ले आ यानी कबूल कर ले, मती हो जा, सरेंडर कर दे, तो उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ, एक एक लफ्ज भी आगे से कुछ नहीं कहा। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपने बीवी और बेटे को, इकलौते बेटे को जो बुढ़ापे की औलाद है उसको वहां बियाबान में छोड़ा है, एक बात नहीं की क्यों, कैसे, क्या होगा, फिर उनका क्या बनेगा, फिर वो जिंदा भी रहेगी कि नहीं, कुछ नहीं। जब नमरूद आग में डालने लगा तो एक बात में मुंह से नहीं की, आग में जलने को तैयार हो गए। जब बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला ने मांगी तो उन्होंने ये नहीं पूछा अल्लाह इसमें लॉजिक क्या है, अल्लाह इसे तुझे क्या मिलेगा, अल्लाह इतनी कुर्बानियां मैं दे तो चुका हूँ, अब और कितनी तू मांगेगा, नहीं कुछ नहीं पूछा। अकल में आती बात या नहीं आती, हर मौके पे उन्होंने अपनी जात, अपनी मोहब्बत, अपनी हर ख्वाहिश को और अपनी हर चीज को कुर्बान कर दिया अल्लाह ताला के हुक्म पे। इसका सिला अल्लाह ताला ने ये दिया कि रहती दुनिया तक इस आखिरी उम्मत में भी उनका जिक्र जिंदा रखा कि अपनी नमाजों में ये दुरूद पढ़ो और उनको याद करो, ये उनका जिक्र खैर है। उन्होंने दुआ की थी अल्लाह मेरा जिक्र खैर बाकी रखना बाद वालों में, अल्लाह ताला ने कयामत तक उनका जिक्र खैर बाकी रखा है। तो अल्लाह अकबर, जब जब ये नबी अपने नबी पे दुरूद भेजेगी उम्मत, तब तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र वो करती रहेगी। और बाकी अल्लाह ताला बाकी रखता है उनको जो अल्लाह की खातिर कुछ कुर्बानी देते हैं, जो अल्लाह के हुक्मों पे मर मिटने को तैयार होते हैं, जो चूं चरां के बगैर अल्लाह ताला की बात के आगे सर झुका देते हैं, जो लॉजिक्स नहीं मांगते, जो इधर उधर सवाल नहीं करते, समय ना वाता ना करते हैं। तो ये देखे कि अल्लाह ताला ने दरूद शरीफ को इसके अंदर रख के हमारे ऊपर रहमत की है कि देखे हम जब दरूद शरीफ पढ़ें तो इतना कुछ हम पा रहे हैं, इतना कुछ हम पा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कोई इस वजह से बढ़ नहीं जाना कि जितना उनका मकाम है मैंने दरूद पढ़ा तो उनका मकाम और ऊपर, नहीं, अल्लाह ताला ने तुमको मकाम दे दिया है, ऊंचे मकाम दे दिए, वरफअना लक ज़िक्रक, अल्लाह ताला ने तो उनका जिक्र बुलंद कर दिया है, लेकिन हमें खुद फायदा पहुंचता है। और उलमा कहते हैं कि कोई दुआ के बारे में भी आप 100% नहीं कह सकते कि ये दुआ कबूल होगी या नहीं, एज इट इज कबूल होगी या नहीं, सिवाय दुरू शरीफ के। ये तो 100% कबूल होगा ही होगा, इसीलिए हम इसके शुरू और आखिर में अपनी दुआओं के दुरू शरीफ पढ़ते कि इसने तो कबूल होना ही है, बीच में चलो हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ताला जब ये पसंद करेगा इस दरूद को, तो हमारी भी दुआ बीच में, मिस्कीन सी छोटी सी दुआ हमारी भी साथ ही चली जाए ऊपर, और ये भी कबूलियत पा ले, इसलिए हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। इससे दुआएं भी कबूल होती हैं, इससे इतना फायदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलेगी कयामत के दिन, जो ज्यादा दुरूद पढ़ता है, जिसने और खास तौर पे जिसने अजान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजा और वसीला की आपके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़ी दावत तामा में वसीला की दुआ है ना, तो कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलेगी उसको। और जिसने सुबह और शाम 10-10 दफ़ा दुरूद पढ़ लिया, उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलेगी। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ऊपर दुरूद भेजा करो, तुम्हारा दुरूद मेरे पर पेश किया जाता है, कि फरिश्ते लेकर आते हैं दुरूद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। जब हम दुरूद भेजते हैं ना, फरिश्ते ले जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रेजेंट करते हैं कि ये आपके फलां उम्मती ने आपके लिए दुरूद भेजा है, और फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं जो बंदा जब तक दुरूद पढ़ता रहता है। तो फरिश्तों की भी दुआएं मिल रही हैं, अपनी भी दुआएं कबूल हो रही हैं। अब ज्यादा चाहते हैं अगर फरिश्ते हमारे लिए ज्यादा दुआएं करें तो ज्यादा पढ़ लें, और इससे रंज गम मुसीबतें ये भी दूर होती हैं, फिकरात से निजात मिलती है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मुसलमानों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करो, दुआओं में, मस्जिदों में, नमाजों में और हर जगह। फरमाया हत्ता कि शादी का पैगाम देते वक्त भी तुम इसे ना भूलना। अल्लाहु अकबर। तो जब आप शादी का पैगाम भी लेकर जाएं तब भी दुरूद पढ़ें। और दुरूद आपने देखिए, एक तो दुआ के भी शुरू में भी आखिर में भी पढ़े, इसी तरह मस्जिद में दाखिल होते हुए पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वसल्लिम, ऐसे पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अग़फिरली ज़ुनूबी, उसके बाद अल्लाहुम्मा इफ्तहली अबवाब रहमतिक, जब आप कहते ना सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह, कह दे बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाहि अल्लाहुम्मा इफ्तहली अबवाब रहमतिक, इस तरह से करके आप एंटर हो जाए मस्जिद के अंदर, और इसी तरह वापस बाहर निकले, बस वापसी पे अल्लाहुम्मा इफ्तहली अबवाब फ़ज़लिक कहना, लेकिन उसी तरह बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह। नमाज जनाजा जब आप पढ़ते हैं तो तब भी दूसरी जो तकबीर कहते हैं उसके अंदर भी फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। मजलिस जहाँ पे भी ख़त्म हो वहाँ पे भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए उठने से पहले, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह का जिक्र नहीं ना करता किसी मजलिस में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं भेजता, तो वो फिर ऐसे ही है जैसे मुर्दार गधे के पास से उठा है, यानी बदबू और ताफुन और गंदगी के पास से उठा है। कयामत के दिन ऐसे लोगों को बड़ी हसरत होगी कि वो उन्होंने क्यों नहीं वहां पे अल्लाह का जिक्र किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद क्यों नहीं भेजा। तो एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के बास फरिश्ते रूए जमीन पे घूमते रहते हैं और लोगों की सरगर्मियों को देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और जब घूमते रहते हैं और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं उनका सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं, वो देखते रहते लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, लेकिन जो कोई दरूद भेजता है तो उसका दरूद लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाते हैं। तो ये दरूद बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद चीज है, जितना आप दरूद पढ़ेंगे ना आप देखेंगे आपके दिल को भी सुकून आता है और आपके काम भी ना बहुत सारे काम ऐसे हैं इंसान के बैठे बैठे आसान होते जाते हैं दरूद शरीफ पढ़ने से। तो इसलिए ज़रूर इसको अपनी ज़ुबान पे जारी रखें, ख़ास तौर पे इन दिनों में, और आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, नमाज में तो यही पढ़ना है वैसे, आप अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद ये भी पढ़ सकते हैं। और देखिए दुरूद इब्राहिमी में भी जो मैंने आपको जैसे अभी आपके सामने पढ़ा है ना, तो ये इसी तरह है, इसमें सैयदना या मौलाना का लफ्ज़ नहीं है, तो हमें भी उसी तरह पढ़ना चाहिए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं अल्फाज, और सैयदना मौलाना आपने नहीं अगर ये हमें सिखाया तो हम भी ये खुद ना ऐड करें। तो आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा एक सहाबी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सजदे में थे और मैंने देखा कि इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया, तो मैं जब सजदे से उठे तो मैंने पूछा कि या रसूल, आज आपने इतना लंबा सजदा किया? आपने फरमाया कि हाँ, जिब्राईल अलैहि सलाम ने एक मुझे खुशखबरी दी थी जिसकी वजह से मैंने ये सजदा किया, ये सजदा शुक्र कर रहे थे। कि क्या खुशखबरी दी थी? कि आपकी उम्मत में से जो आपके ऊपर एक दफा भी दुरूद भेजेगा तो अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल करेगा, उस और एक दफा भी सलाम भेजेगा तो अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 बार सलाम भेजेगा। सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसके ऊपर सज्दाए शुक्र अदा किया। हमने तो शायद कभी सोचा भी नहीं कि इतनी बड़ी बात, एक दफ़ा दुरूद भेजने पे इतनी बड़ी बात हमें मिलेगी, तो हम ज़्यादा ही दुरूद भेजें और हम इसके ऊपर ज़्यादा शुक्र अदा करें। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इतनी बड़ी सआदत दी कि हम हमें दुरूद भेजने के ऊपर इतना कुछ मिल जाता है। और क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा ज़्यादा बड़े दर्जे पे होगा जिसने ज़्यादा दुरूद भेजा होगा। सुभान अल्लाह। और ख़ास तौर पे जुमे के दिन और जुमे की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरे ऊपर दुरूद भेजो, ज़्यादा उस वक्त दुरूद भेजें। जुमे की रात कब शुरू होती है? थर्सडे की मगरिब से लेके फ्राइडे की मगरिब तक ये जुमा है, ठीक है, सारा ही जुमा है। तो इसी के अंदर आपने बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और सारी और बातों को छोड़ के, सारे और अज़कार को छोड़ के आपका एक ही जिक्र होना चाहिए और वो है दुरूद शरीफ। तो इसकी कसरत करें। इस तरह हमने बात की थी कि हम सदकात करेंगे अपने, इसी के लिए इसी ज़िमन में ये बात कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन वो लोग हैं आपकी फैमिली में जो कोई मसाकीन है या बेवाएं खास तौर पे, या और यतीम कोई मिल जाए आपको तो ज़रूर उसकी हेल्प करें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेवाओं और मसाकीन के लिए मेहनत और कोशिश करने वाला उस तहज्जुद गुजार की तरह जो सुस्ती नहीं करे, और उस रोज़ेदार की तरह जो कभी रोज़े नहीं छोड़ता, यानी उसको मुसलसल रोज़े रखने और मुसलसल तहज्जुद पढ़ने का, हर दिन तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलता रहता है। जो बेवा और मिस्कीन के लिए मेहनत करता है, उनके कोई काम है, उनके वो कोई काम कर दें, उनकी कोई ऐसी हेल्प उनको चाहिए किसी तरह की भी, उसमें आगे बढ़ जाएं, उनसे पूछ लें, उनकी साथ ताउन करें, उनकी दादरसी करें, और उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए खास तौर पे तो उसके अंदर हेल्प कर दें। लेकिन अपनी कम्युनिटी, अपने खानदानों में, अपने इर्द गिर्द वालों में देखें कोई बेवा या मिस्कीन हो तो उसके लिए आगे बढ़े। उनको ना आके आपसे कहना पड़े, आप खुद आगे बढ़ के उनके लिए हेल्प करने के लिए आगे जाएं। आज का जो जिक्र है उम्मुल मोमिनीन सईदा जुबेरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सुबह सवेरे उनके पास से निकले तो अपनी नमाज की जगह पे थी। चाश्त के वक्त यानी सूरज चढ़ चुका था, फजर की नमाज के वक्त के गए हुए, सुबह चढ़ने सूरज चढ़ने के बाद जब आप लौटे तो देखा कि यहीं पे बैठी नहीं है, वो वहीं पे इबादत कर रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम तब से इसी हाल में हो जब से मैंने तुम्हें छोड़ा था? उन्होंने फरमाया हाँ। आपने फरमाया मैंने तुम्हारे बाद 4 कलमे 3 दफ़ा कहे, अगर वो इन कलिमात के साथ तुम इन कलिमात के साथ तुम जिक्र करती तो जो भी अभी तक तुमने कहा है उस सारे के ऊपर ये भारी होते। और वो क्या है? सुभान अल्लाह ही व बिहम्दिही आदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत आर्शिही व मिदाद कलिमाती। ये 3 दफ़ा कहना है सुबह को। जब आपने 3 दफ़ा कह लिया तो इतना है ये, इतना यानी कॉम्प्रिहेंसिव है, इतना होलसम है, इतना बड़ा ये कलिमा है कि बहुत सारे आप कलिमात कहते रहेंगे उसकी जगह ये 3 दफ़ा कह देंगे तो यही भारी है सब पे। ये पाक है अल्लाह, तू पाक है और पाक है अल्लाह ताला, और उसकी तारीफ है कितनी पाकी और कितनी तारीफ उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी ज़ात की रज़ा के बराबर, उसके अर्श के वज़न के बराबर, उसके कलिमात की स्याही के बराबर। इतनी ज़्यादा आपने अल्लाह ताला की तारीफ भी बयान कर दी और उसकी तस्बीह भी बयान कर दी। और आज जो दुआ मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, इसको कहते हैं सैयदुल इस्तेफार, यानी इस्तेफार के जितने कलिमात हैं उनकी सरदार दुआ। ये वो दुआ है कि अगर एक इंसान सुबह को कर लेना, शाम से पहले अगर उसको मौत आ जाती है तो जन्नत में दाखिल होगा, अगर शाम को कर ले और सुबह से पहले उसको मौत आ जाए तो वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी इतनी ये फजीलत वाली दुआ है, इसलिए सुबह को और शाम को आपको करना चाहिए इसको। और देखिए जैसे हम कोई दवा खाते हैं ना, तो इसका असर कितनी देर तक रहता है, ये दवा, ये विटामिन हर दिन आपने मतलब 3 दवा खाना है, एक है कि वंस अ डे ही काफ़ी होता है, तो एक सुबह शाम खाने वाला होता है, तो ये दुआएं भी यानी सुबह को पढ़ेंगे तो शाम तक के लिए काफ़ी, शाम को पढ़े तो इसका मतलब सुबह भी पढ़नी शाम भी पढ़नी, किसी वक्त भी मौत आ सकती तो फिर जन्नत में दाखिल होंगे। तो क्या है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलकतनी व अना अब्दुका व अना ला अहदिका वअहदिका मस्तता अऊजु बिका मिन शर्री मा सनातु अबू लक बिनिअमतिका अलैया व अबू बिदंबी फ़ग़फिर ली फ़इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। तो ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है कि अल्लाह तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तूने मुझे पैदा किया अल्लाह, मैं तेरी ही बंदी हूँ और मैं तेरे अहद और तेरे वादे पर कायम हूँ अपनी ताकत के मुताबिक। अल्लाह मैं पनाह मांगती हूँ तेरे जरिए से उस चीज़ के शर से जिसको मैंने कर लिया, यानी जो गुनाह है मेरे, मैं इकरार करती हूँ तेरे सामने तेरे इनाम का जो तूने मुझ पे किया, यानी तूने मेरे ऊपर बहुत नेमतें की हैं, मैं मानती हूँ अल्लाह अपने गुनाहों को भी, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे और तेरे सिवा कोई माफ़ नहीं कर सकता, सिर्फ तू ही कर सकता है। तो अल्लाह तेरी नेमतें भी बहुत ज्यादा है मेरे ऊपर और मेरे गुनाह भी बहुत ज्यादा है, मैं गुनाह कर रही हूँ अल्लाह तू नेमतों की बारिश कर, मैं इकरार करती हूँ तूने नेमतों में कमी नहीं की है अल्लाह, तूने मुझे बहुत अता फरमाया, मैं तेरी ही बंदी हूँ अल्लाह तू अब माफ कर दे। तो ये बहुत ही प्यारी दुआ है, चाहे आप जितनी भी इस्तिगफार की दुआएं करते रहें लेकिन इन दुआओं को जरूर शामिल रखें जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे पहले अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा वो बताई थी, आज ये वाली बताइए। तो जो ज़्यादा यानी जिनके ऊपर फजीलतें आई हैं उन दुआओं को ज़रूर अपने सजदों में शामिल कर लें अपने, और जैसे आप सुबह और शाम दुआ करते हैं हिफाजत की और वैसे दुआएं करते हैं तो उनमें शामिल कर लें। अल्लाह ताला हमें सबको माफ़ फरमा दे और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनसे वो राज़ी हो गया हो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।